नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड ने वाशिंगटन डीसी में दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री आज रात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभा में नया आयकर विधेयक 2025 पेश करेंगी। सरकार की विभिन्न राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं को एक साथ लाने की योजना और जमशेदपुर में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज शाम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मुकाबला जमशेदपुर एफसी से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की दो दिन की यात्रा पर आज वाशिंगटन पहुंचे। वाशिंगटन पहुंचने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने और भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने नागरिकों के हितों और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड ने आज वाशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
श्री मोदी और सुश्री गबार्ड के बीच चर्चा में द्विपक्षीय खुफिया सहयोग बढ़ाने, विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी रणनीति, साइबर सुरक्षा, उभरते खतरों और रणनीतिक खुफिया जानकारी साझा करने पर चर्चा हुई। उन्होंने सुरक्षित, स्थिर और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप द्विपक्षीय और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। श्री मोदी का अमरीकी प्रशासन के वरिष्ठ नेताओं, व्यापार जगत के और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करने का भी कार्यक्रम है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा सहयोग, आतंकवाद का मुकाबला, भारत प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और भारत और अमेरिका के लोगों के बीच में संबंधों को लेकर आपसी सहयोग मजबूत रहा है और श्री मोदी की इस यात्रा से यह संबंध और प्रगाढ़ होने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच आज लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2 बजे के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर रिपोर्ट सदन में पेश की गई। राज्यसभा में भी कुछ समय के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आज सुबह जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से बार बार आग्रह किया कि वे सदन की कार्यवाही चलने दें। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हो गई है। उधर राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच वक्फ संशोधन विधेयक पर समिति की रिपोर्ट पेश की गई। आज सुबह जब सदन की बैठक शुरू हुई तो भाजपा सांसद डॉ मेधा विश्राम कुलकर्णी ने रिपोर्ट की एक प्रति राज्यसभा में रखी। रिपोर्ट रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सभापति जगदीप धनखड़ ने उनसे सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सभापति ने सदन को 11:20 तक के लिए स्थगित कर दिया। जैसे ही सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि समिति की बैठकों में विपक्षी सदस्यों की असहमति की टिप्पणियों को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।
मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए और उसके बाद में और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए।
इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मूल रिपोर्ट और असहमति की टिप्पणियों का कोई भी हिस्सा हटाया नहीं गया है। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना की। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष पर गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया।
चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था, यह बात स्पष्ट दिख। और ये दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है।
राज्यसभा में आज केंद्रीय बजट 2025-26 पर चर्चा फिर से शुरू हुई। भाजपा सांसद दर्शना सिंह ने कहा कि ये बजट विकसित भारत 2047 का रोड मैप है। उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं और किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मनरेगा के लिए बजट आवंटन नहीं बढ़ाया गया है। चर्चा जारी है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज शाम बजट 2025-26 पर चर्चा का जवाब देंगी। सरकार विभिन्न राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं को एक साथ लाने की योजना बना रही है। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए कई पेंशन योजनाएं उपलब्ध हैं। इनमें अटल पेंशन योजना, पीएम श्रमिक मंथन और पीएम श्रम योगी मंथन शामिल हैं।
ईपीएफओ में जो एनरोलमेंट होते हैं उसके भी लाभार्थी, उसको तो ऑलरेडी पेंशन मिल रहा है। ऐसे लोगों की संख्या 78,000 से 80 लाख के आगे पीछे है। वैसे ही अटल पेंशन योजना है, आज तक 5.55 करोड़ लोग अटल पेंशन योजना के साथ जुड़े हुए हैं। वो 3,000 से 5,000 तक की पेंशन सिक्योरिटी देते हैं।
सरकार ने बताया है कि भूकंप के खतरे को कम करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई है। राज्यसभा में आज अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लोग प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहें।
हिमालयन बेल्ट, उसमें उत्तराखंड भी आता है, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, हिमाचल भी है, उनको लेकर के अर्ली वार्निंग सिस्टम की एक व्यवस्था निर्माणित की गई और साथ ही साथ डिजास्टर रिस्पांस ट्रेनिंग की एक अलग व्यवस्था, जो भी संबंधित लोग हैं उनको भी और आम समाज को, आम नागरिकों के लिए भी, और इसके लिए बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम भी प्रारंभ किए गए।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा में आज नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया गया। आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के उद्देश्य से लाया गया यह विधेयक सदन की कार्यवाही में सूचीबद्ध किया गया है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नया आयकर विधेयक लाने की घोषणा की थी। उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि सालाना 12 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना होगा। आज विश्व रेडियो दिवस है। लोगों में रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के जरिए सूचना पाने को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का विषय है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। इस अवसर पर प्रस्तुत है आकाशवाणी समाचार की ओर से खास पेशकश।
आज विश्व रेडियो दिवस पर चलिए बात करते हैं कुछ आवाजों की जिन्होंने श्रोताओं के दिलों में खास जगह बनाई। जाने माने समाचार वाचक देवकीनंदन पांडे का रेडियो के बारे में क्या कहना था, आइए सुनते हैं।
हमारी आवाज ही लोगों के कानों तक जाती है। वैसे रेडियो की इम्पोर्टेंस, मैं ये बात आपको बता दूं कि अभी इस मुल्क में खत्म नहीं होगी, गांवों का मुल्क है तो वहां तो रेडियो की उतनी ही इम्पोर्टेंस आज भी है जितनी पहले थी।
बचपन में जब अमीन सियानी का हर दिल अजीज कार्यक्रम बिना का गीत माला सुनते तो लगता कि ये आवाज़ किसी दूसरी दुनिया से आती है।
भाइयों अब आप बैठ जाइए जल्दी से अपने रेडियो दोस्त अमीन सियानी के साथ गीत माला की छांव में।
कौन आया? आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपना पसंदीदा प्रोग्राम मन की बात रेडियो पर करते हैं।
मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूँ और मेरे मन में तो ऐसा है ये बातचीत का अपना क्रम आगे भी चलता रहे।
30 साल से रेडियो सुन रहे हमारे श्रोता देवेंद्र दास का मानना है कि रेडियो का कोई विकल्प नहीं हो सकता।
मेरा जब से होश संभाले तब से रेडियो हमारा सबसे प्यारा है, वही हमारा जिंदगी है सब। हम एक दिन अगर ये समाचार नहीं सुने तो हमको नहीं होगा।
हम उम्मीद करते हैं जिन आवाजों ने रेडियो को एक नई पहचान दी उन्हें हमेशा यूं ही इस अवसर पर याद किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए फरहत नाज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि समाचार और संस्कृति से लेकर संगीत और कहानी कहने तक रेडियो एक शक्तिशाली माध्यम है। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा है कि रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक विश्वसनीय स्रोत है। विश्व रेडियो दिवस पर आज नई दिल्ली में रेडियो महोत्सव 2025 का उद्घाटन करते हुए श्री जाजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात अब एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है जहां आम लोगों की आवाज सुनी जाती है।
Prime Minister Narendra Modi ji in the current day and age has truly made use of the medium of radio and in an absolutely iconic manner. He has not just recognized the immense power of radio to connect with the people of India, especially in the remote corners of the country, but he also understands the value of the medium and that's why his monthly program Mann Ki Baat has actually revolutionized the way communications happen with the citizens when it comes to any government across the world.
इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि लोगों को आकाशवाणी के कार्यक्रमों की सामग्री के साथ साथ समाचारों पर भी भरोसा है।
All India Radio has always committed itself towards resilience and bringing about awareness about climate change. As it was mentioned earlier, the reach of Akashvani is almost 90% of the population and 98% and all the FM part also, it almost covers 75% of the population. So we are reaching everywhere, all parts of the country.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा आज लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश करने के बाद लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान लोगों को अफवाहों और गलत सूचनाओं से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार के हवाले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट्स की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है जो महाकुंभ को लेकर फर्जी खबरें फैला रहे हैं।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान 7 ऐसे अकाउंट की पहचान की है जो कथित तौर पर एक पुराने वीडियो को महाकुंभ से जोड़कर फर्जी खबरें फैला रहे थे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो वर्ष 2021 में गाजीपुर का है जहां शहर में नदी किनारे शव मिले थे। इन अकाउंट्स पर प्रदेश सरकार और पुलिस की छवि धूमिल करने तथा समाज में विद्वेष फैलाने का आरोप है। इस संदर्भ में प्रयागराज के कोतवाली कुंभ मेला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस फर्जी वीडियो को कर स्पष्ट किया है कि ये महाकुंभ से संबंधित नहीं है और कुंभ मेला पुलिस के आधिकारिक अकाउंट से इसका खंडन भी जारी किया गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
राजस्थान के कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आज महाकुंभ के 57 तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस एक ट्रक से टकरा गई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। तीर्थयात्री उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ से लौटते समय मध्य प्रदेश के मंदसौर जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक ट्रक ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। एक अन्य घटना में कल रात शाहजहांपुर में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने के बाद वैन पलटने से 4 मजदूरों की मौत हो गई और 16 घायल हो गए। मुंबई में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का सामना जमशेदपुर एफसी से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे जमशेदपुर में खेला जाएगा। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में आज महिला और पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला होगा। महिला हॉकी में मध्य प्रदेश का मुकाबला हरियाणा से होगा जबकि पुरुष हॉकी में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड ने वाशिंगटन डीसी में दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री आज रात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया। लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च तक स्थगित और सरकार की विभिन्न राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं को एक साथ लाने की योजना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।